शंकर भगवान की
जय सतगुरुदेव भगवान की
शिव पुराण 18 पुराणों में चौथा स्थान रखता है। यदि शिव पुराण 5 बार सुन लिया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कदाचित 7 बार सुन ले तो भगवान शंकर के दर्शन भी हो जाते। 7 बार विधि विधान से जिसने संपूर्ण शिव पुराण श्रवण किया लभन्ते ब्रह्म दर्शनो, उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता। शिव पुराण साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, शिव कल्याण के दाता है, सुख और शांति प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की शरण ग्रहण करना सौभाग्य की बात होती है। एक बार प्रयागराज में 6 कुल के ऋषियों का एक विशाल सम्मेलन हो रहा था। सारी लोग आपस में बैठ के सांसारिक चर्चा करते, संत बैठ करके ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा करते, बैठकर विचार करने लगे कि कलजुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा। विचार चल ही रहा था, सूत जी वहां पधार गए। वेद व्यास के पट्ट शिष्यों में इनका नाम है। सूत जी को देखते ही सभी ऋषि महर्षि उठ के खड़े हो गए, स्वागत किया। हमारे सौभाग्य से आपका आगमन हुआ है, आप ज्ञान के भंडार हैं। देखो, गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पुराणों के ज्ञाता होते हैं शिव पुराण के आधार पर, वो विशेष अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव
पामर क्या जाना,
पामर का जाना। गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर और गुरु में अभेद है, एक भाव। जैसा कल भी कहा था कि गुरु चरणों का जो चिंतन है वो हृदय की आंखें खोल देते। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरणों का चिंतन भी तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल सकता है। विश्वास हो, प्यार हो, चिंतन हो, सारे काम अपने आप ठीक ठीक हो सकते हैं। सूत जी से यही प्रश्न किया गया। कलयुग प्रारंभ हो रहा है, ब्राह्मण अपने धर्म कर्म से नीचे गिर जाएंगे, संध्या पूजा पाठ कलयुग के ब्राह्मण सब भूल जाएंगे। वे संस्कृत पढ़ेंगे ज्ञान के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। वेद बेचेंगे, कुमार्गामी हो जाएंगे कलयुग में ब्राह्मण। देवी भागवत में एक कथा मिली कि गौतम ऋषि के साथ कुछ ब्राह्मणों ने छल कपट किया था, तो उन्होंने श्राप दिया था, जाओ रवरो नरक में वास करोगे। और जब कलयुग आएगा तो तुम ब्राह्मण बन के प्रकट होगे और धर्म को मिटाने में तुम्हारा योगदान होगा। धर्म की रक्षा के लिए नहीं,
धर्म को मिटाने के लिए,
मिटाने के
सहयोगी।
तुम पतित हो गए हो, पापी हो, जो आश्रय देने वाले को भी धोखा दे तो नरक में भी जल्दी उद्धार नहीं होता। ध्यान दे दे, कलयुग के क्षत्रिय शूरता वीरता भूल जाएंगे, देवी अधर्म रत हो जाएंगे, वैश्य व्यापार में बेईमानी करना शुरू कर देंगे, शूद्र चारों वर्णों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहेंगे, धनवान होकर के चरित्रहीन होंगे और विद्वान हो जाएं तो ब्राह्मणों को आंखें दिखाएंगे, कहेंगे हम तुमसे कम थोड़े, बादा ही सूत्र दुजन सन हम तुमते कछु घाट, जाना ही ब्रह्म सु विप्रवर आंख दिखावे डांट। स्त्रियां कलयुग की चरित्रहीन हो जाएंगी, कोई कोई पतिव्रता मिलेगी, नहीं तो ये चरित्र से दूषित हो जाएंगे। ये पति को आंखें दिखाती रहेंगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी, इनका घरों में राज्य हो जाएगा। शूद्र अपने कर्म से भी नीचे गिरकर ऊपर उठ जाएंगे। ऐसी भयानक स्थिति में कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये संतों का चिंतन है। जैसा हमने कहा ना, गृहस्थ व्यक्ति परिवार के लिए सोचता है, संत जो होते हैं वो समाज के लिए सोचते हैं, सबका उद्धार कैसे। संत सरलचित जगत हित विशेषण दिया है। संत कौन है जो सरलचित होते हैं,
जगत हित।
उनका स्वभाव थोड़ा नीरस भी होता है, सरस कम होता है। क्यों? कि वो अपने भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, जगत कल्याण के लिए सोचते रहते हैं, उनको समाज में बैठकर गपशप लगाने का समय नहीं रहता। लेकिन विशद गुण होते हैं उन, जैसे कपास है ये छिद्रों को ढकता है, कपास से तो कपड़े बने हैं ना, और कपड़े से छिद्र ढकते हैं। निरस विशद गुणमय फल जास जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, छिद्र ढांकने वाले होते हैं। हम दूसरों के दोषों का खुले दिल से वर्णन करते हैं, गुणों का नहीं। और संत जो होते हैं वो दूसरों के दोषों को तो छुपाते हैं और उनके गुणों को प्रकाशित करते हैं। संत की विशेषता होती। अस्तु, सूत जी महाराज से निवेदन किया गया कि ऐसे जीवों का कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो आप बताएं। तब उन्होंने कहा कि यही प्रश्न हमारे गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार जी से किया था, जो उत्तर उन्होंने दिया वो हम तुम्हें सुना देते हैं। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। सनत कुमार जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं विमान से, व्यास जी को देखा उतर पड़े। सामने खड़े हो गए, नेत्र बंद थे व्यास जी के, जैसे नेत्र खुले देखा ये तो सनत कुमार सृष्टि के प्रारंभक ये देवता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचते हैं तो सबसे पहले चार भाइयों का निर्माण। पर चार भाई के यहां चारों वेद हैं, ये मूर्तिमान वेद जैसे एकदम व्यासी उठे और चरणों में लौट गए, आसन पर बैठा ला। सनत कुमार जी ने पूछा व्यासी क्या कर रहे थे? प्रभु मैं ध्यान कर रहा था। जोर से हंस पड़े सनत कुमार, मैं भी पहले बहुत भटका हूं यहां, अंत में नंदी के जो प्रधान गण हैं, भगवान शंकर के प्रधान गण हैं नंदी, उनकी कृपा हुई और उन्होंने मुझे शिव पूजन का विधान, उनका चरित्र सुनाकर मेरा संशय दूर करते। क्या सुनाया उन्होंने? सनत कुमार जी ने कहा व्यास जी मैं भी पहले बहुत भटकता रहा, वहां जा वहां जा, उनसे पूछ उनसे पूछ, समाधान नहीं निकल रहा। सनत कुमार जी ने कहा वेद व्यास जी शिव का पूजन करो, ये शांति के दाता हैं, कल्याण करता हैं, जो इनकी शरण आ जाए वो अभय हो जाता है। क्या ये भाई जना जी धन्य जीव लोक, ये वही सदा ध्यायंती विश्वनाथों, जो शिव को मानते हैं पूजन करते हैं भाग्यशाली। तीन काम कर लो, मुख से उनका नाम ले लो, कानों से कथा सुन लो और मन से स्मरण कर लो, बस महासाधन मुच्यते। क्या श्रोत्रेणो श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन। लोग संतों के पास जाते हैं महाराज कोई साधन बताओ, मन शांत हो जाए, परिवार की समस्याएं हल हो जाए, पूछते फिरते रहते हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं बस तीन काम कर लो, श्रोत्रेणो श्रवणो कानों से
कथा सुनो,
वचसा कीर्तनं तथा मुख से उनका नाम, मनसा स्मरणम तस्य मन के द्वारा उनका। आगे वाक्य देते हैं महासाधनम उच्यते, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। व्यास जी ने कहा भगवान ये तीनों काम एक व्यक्ति से न हो सके, मैंने ऐसा बेईमान है ना, गपशप लगाने बैठ जाओ घंटे दो घंटे तीन घंटे यूं निकल जाएंगे। मणिराम बड़े खुश रहे, भजन पूजन में बैठो थोड़ी देर में मणिराम कहेंगे बस हो गया बहुत हो गया चलो चलो, यही बड़ी समस्या है ना। क्या टीवी में पिक्चर आ रहा तीन घंटे यूं बैठे रहे और भजन में बैठेंगे मन यहां भागता है। अगर ये तीनों काम एक व्यक्ति से न हो सके, इससे भी कोई सर्व उपाय है क्या? हाँ है। क्या? स्नान करके एक गड़वी जल भगवान शंकर पर चढ़ा दो, 24 घंटे की पूजा का फल तुम्हें मिल जाएगा।
हर हर।
फिर व्यास जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान शंकर के दो रूप क्यों हैं, साकार भी है और
साकार,
बाकी देवताओं के तो एक ही रूप होता है, उनके दो क्यों, दो तरह की पूजा क्यों? सनत कुमार जी ने कहा ये भी गहन विषय है, फिर भी हम आपको सुना देते हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ था, वो कहते थे मैं बड़ा हूं, वो कहते थे मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा कहते थे चूंकि मैं पालन कर पैदा करता हूं इसलिए बड़ा हूं, और नारायण कह रहे थे मैं पालन करता हूं इसलिए बड़ा हूं। जब निर्णय नहीं हो सका तो दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास आए, तो निर्णय तो यही देते हैं ना, देवताओं के सरपंच हैं ये कौन। जब देवताओं में समस्या उलझ जाए, न सुलझ पाए, तो फिर शंकर की शरण आते। मनुष्यों की समस्याएं देवता थोड़ा बहुत हल करते हैं, और देवताओं की समस्याओं को
महादेव
भगवान शंकर हल। दोनों पहुंचे हैं, भोलेनाथ को पता लग गया, सर्वज्ञ हैं वो, तो अग्निस्तंभ प्रकट कर दिया। अग्निस्तंभ खंभा जल, वो स्तंभ इतना बड़ा पैदा किया कि आगे देखा ही नहीं रहा कहां तक। भगवान शंकर ने कहा कि जो इसका आदि या अंत पालेगा दोनों में वो बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाऊं, नारायण बोले मैं नीचे चला जाता हूं। नारायण जी चले, थोड़ा नीचे गए, वापस आ गए। क्यों, आपको आदि का पता लग गया क्या? नहीं बोले नाथ, वेदों ने आपको अनादि कहा है, जिनकी आदि का किसी को पता ही ना हो उसका नाम अनादि कहलाता। तो अनादि की आदि का पता तो लग ही नहीं सकता, फिर हम अपना समय क्यों खराब करें, इसलिए हम जल्दी वापस लौटे। आप उनको आ जाने दो। तो निर्णय ने वो चलते गए सैकड़ों वर्षों तक चलते गए, लेकिन ज्योति का अंत नहीं मिला। विराट चेतना आजकल जिसे कहते हैं, क्या ऊर्जा, परमात्मा ऊर्जा रूप है, विराट चेतन तत्व है, चेतन से ही ये संसार बनता है, उन्हीं से बनता है और वही बनते हैं। थोड़ा कठिन तो है पर सोच समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो स्वप्न आपको आता है, सबको अनुभव है ही है, स्वप्न में का जो जगत आपको दिखता है उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है, कभी सोचा? आपसे ही, आपके द्वारा आप ही स्वप्न का जगत बनते हैं। जड़ से जगत बन नहीं सकता ना, चेतन से बनेगा, और आपके अंदर चेतन तत्व है और लाइट भी है, ये भी ध्यान रखना। अंधेरी रात है, नेत्र बंद है, कमरा बंद पड़ा है, और अंदर आपको स्वप्न दिख रहा है कि नहीं, बोलो भाई। तो वस्तु प्रकाश में दिखती है कि अंधकार में दिखती है? इसका मतलब एक तो ये सिद्ध हो गया ना कि आपके अंदर प्रकाश है, और वो आपकी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, और स्वप्न का जो जगत है वो आपसे ही बना है, आप ही स्वप्न बन गए हो, आप ही स्वप्न बनना बनते हो और आप ही स्वप्न को देखते रहते हो। गुरुवाणी में कहा गया आप है घट, आप है अमृत, आप है पीवन हारा, थोड़ा सा कठिन है, बस आगे सरल सुना देते। दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीन होते हैं, आप है घट, आप है अमृत, आप है पीवन हारा। आपको स्वप्न आया है और स्वप्न में आप चाय पी रहे हैं अथवा जल पी रहे हैं, तो घट भी आप से आप ही बने हुए हो, उसमें चाय भी आप ही बने हुए हो और आप ही पी रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं? स्वप्न का जो जगत बना है उसका रॉ मटेरियल कहीं बाहर से आया है क्या? आपके अंदर से निकला है, तो आप ही स्वप्न बन गए हैं और आप ही स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न के निर्माता और दृष्टा दोनों आप ही हैं। इसी तरह से जो अनंत विराट चेतना है, उसके द्वारा ही ये संसार बनता है, माने वही संसार बन जाते हैं और वही उसको देखने वाले भी बना करते हैं। शंकर भगवान की
जय।
आत्मा आपकी निराकार है, ज्योति रूप है, आप उसे भूले बैठे। जो भूलेगा वो भटकेगा, जो भटकेगा वो दुखी होगा, ये ध्यान रखें। अगर आपके अंदर अशांति है, आप भूले भटके इंसान हैं। यदि आपको अपने स्वरूप का ठीक बोध हो गया है, फिर शरीर से ज्यादा ममता रहेगी नहीं, ठीक है, रहे रहे जाए जाए, हाय मैं मर न जाऊं, इसका मतलब शरीर को मैं माने बैठे हुए थे, मैं शरीर हूं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो जड़ है, तुम चेतन हो, और चेतन की मृत्यु होती नहीं है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, न जायते मृते व कदाचित। आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है। अब तुम अमर होकर के भी मरने से डरते हो, इसका मतलब कि अमर तक अभी आपकी वृत्ति पहुंची नहीं। मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, मैं वृद्ध नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, मैं जन्मता नहीं हूं, मैं तो व्यापक चेतन तत्व का अंश हूं। फिर शरीर है, ये प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति का प्रकृति में जाना है, जड़ को जड़ में जाने दो, चेतन को चेतन से जोड़ दो। तुम चेतन होके जड़ को पकड़े बैठे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण होता है। चेतन अगर चेतन से जुड़ जाए तो फिर जड़ की तुम्हें जरूरत ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज 22 वर्ष की उम्र में अपने गुरु से बोले, गुरुदेव मुझे समाधि में बैठा दीजिए। उनके लाखों शिष्य थे, रो पड़े, नहीं गुरुदेव आपको नहीं जाना, आपसे हमें ज्ञान लेना है। बोले हमने पुस्तकों में भर दिया है ज्ञान, पढ़ते रहना सुनते रहना। अच्छा शिष्यो ये बताओ, नौका में बैठे और किनारा मिल गया, नौका में बैठे रहना है कब त्यागना है? बोले हम जिसलिए पैदा हुए थे उस तत्व को हमने पा लिया है, तभी बोझा क्यों ढोते रहेंगे, इसे छोड़ के चेतन हो। आदि शंकराचार्य के बारे कई बार हम सुना चुके, एक कापालिक आया और कहता हमें आपका सिर चाहिए, मंत्र सिद्ध करना, यहां बहुत शिष्य बैठे हुए हैं, कल वहां आ जाना, अकेले हम मिलेंगे। कापालिक ने सोचा कि बहाना बना रहे, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। ठीक, दूसरे जब वहां पहुंचा, देखा शंकराचार्य अकेले बैठे हुए और बोले, सिर काटना है ना तुमको, मैं जरा अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, फिर तो सिर काट। चौकड़ी लगा के बैठ गए थे। कापाले की तलवार उठाई मारने के लिए, उनका शिष्य आ गया, उसने हाथ पकड़ लिया पीछे से और तलवार छीन करके उसी का सिर काट। जब काफी देर तक सिर नहीं कटा तो शंकराचार्य के नेत्र खुले, देखा उमरा कटा पड़ा हुआ। अरे भाई इसको किसने मार दिया? गुरुदेव मैंने मारा। क्यों मार दिया? आपको मारने आया था, लेकिन मुझे तो शरीर की जरूरत नहीं है। इसको चारे को मार दिया, इसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे ना। राम राम राम, बड़ी गलती की थी। वो आपको मार रहा था, बोले हमें मरने का भय नहीं, हम शरीर नहीं है ना, जड़ नहीं है, हम चेतन है और चेतन की मृत्यु होती नहीं है। चिप्स है ना मोबाइल में, कुछ भरा हुआ है एक मोबाइल में, मोबाइल क्रिकेट टूट गया, आपने वो चिप्स निकाल के दूसरे में डाल दिया, जो यहां भरा था वहां बोलने लगेगा नहीं बोलेगा? ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नहीं है? इसी तरह शरीर मोबाइल की तरह है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो चिप्स की तरह है, यहां से निकलेगा दूसरे शरीर में जाएगा, वहां जाके वो करने लगेगा। दुख इसलिए है मेरे बेटे छूट जाएंगे, मेरे पोते छूट जाएंगे, मेरा मकान मेरी पत्नी छूट जाएगी, ये जो मेरापन है ना, यही कारण जीव दुखी हो रहा है। जीव के दुख का कारण यही है कि इसने अनात्मा को आत्मा मान लिया है, शरीर को आत्मा मान लिया है, इसलिए इससे हटने में दुख नहीं, बड़ा दुख होता, मैं मर न जाऊंगा। अरे मरना तो है ही, अब तो शरीर क्या है, छोड़ो छाड़ो इसको जल्दी।
हर हर महादेव।
ब्रह्मा जी गए ऊपर, अंत तो मिला नहीं, कहीं विष्णु को ना मिल गया हो, तो केतकी पुष्प से कहा कि तुम गवाही दे देना कि मुझे ऊपर से उतारा है आपके ऊपर से, और गौ माता से कहा तुम भी गवाही दे देना, मैं तुमको और योग श्रेष्ठ बना दू। लौट के आए, आओ ब्रह्मदेव पधारो, बहुत समय बाद लौटे, आप तो अंत पाके लौटे होंगे, प्रभु अब गया था तो अंत पाके लौटना था, अंत मिल गया? बोले हाँ, प्रमाण क्या है? केतकी पुष्प ही है, ऊपर से उतारा है। दूसरा गवाह अदालत में आज ही, कम से कम दो गवाह चाहिए ना भाई। गौ माता उन्होंने भी शेर हिला दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए धर्म का त्याग करने वाले जाओ दोनों को अभिशाप है, केतकी पुष्प से जो मेरी पूजा करेगा सर्वस्व मिट जाएगा। गौ माता तुम्हारा पूरा शरीर तो पवित्र रहेगा, लेकिन मुख तुम्हारा अपवित्र हो। जिस बर्तन में गाय को खाना दिया ना, फिर उसको अच्छी तरह साफ करना होता है, तब पवित्र होता है। और नारायण आपने सत्य का पक्ष लिया है, इसलिए आपके राम कृष्ण भी अवतार होते रहेंगे, जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, जगह जगह आपका कीर्तन भजन पूजन होता रहेगा। अब ब्रह्मदेव हमारा अभिशाप है, तुम्हारा कहीं मंदिर भी नहीं बनेगा, पुष्कर में केवल मंदिर है। जो बड़े बनना चाहते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जो अपने को छोटा समझते हैं वो एक दिन बड़े हो जाते हैं। नीवा हो के चल, निवियानु रब मिल दो, पंजाबी में कहा जाता है नीवा होके
चल,
निवियानो
मिलता।
अब प्रत्यक्ष उदाहरण आपको हम देते हैं, सीढ़ियां चढ़ना है तो 10 डिग्री झुकना पड़ता है, पहाड़ में चढ़ना हो तो थोड़ा ठीक है, और नीचे उतरना हो तो 10 डिग्री अकड़ के चलना पड़ेगा। उतरते समय अगर झुके तो मुंह के बल गिर जाओ। फिर जो नीचे उतरना चाहते हैं वो 10 डिग्री सीधे होते हैं, और जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण, तुम अगर ऊपर उठना चाहते हो तो नीवा होके चलो, निवियान रब मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उसको। जो झुकता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो अकड़ता है वो नीचे गिर जाता है। बोलो शंकर भगवान
की जय।
हर हर महा। उन्होंने तो आश्रमों को पुत्री जैसा मान रखा हुआ है, चिंता की क्या बात है। आ रहा भक्तों की सेवा होती रहे, दो गंगाओं में स्नान होता रहे। दो गंगाएं हैं, एक तो जलमयी गंगा है, दूसरी कथामयी गंगा है। ये दो गंगाएं हैं, यहां दोनों मिल रही हैं। जलमयी गंगा में गोता लगाओ और चरित्रमयी गंगा कानों से सुनो, मुख से उनको पीते रहो, कानों से इसको पीते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शंकर भगवान की
जय। हर हर
महादेव। आपका नाम जपने के लिए, स्मरण करने के लिए मंत्र चाहिए, तो भगवान शंकर ने दोनों को उनके कपड़ा डाल दिया ऊपर, एक हाथ सिर पर रखा और कान में तीरे से 3 बार नमः शिवाय कहकर के सुना दिया। क्या भगवान शंकर ने जब ये मंत्र दिया तो दक्षिणा भी तो देनी है ना, तो दोनों ने कहा आज के बाद ये जीवन हमने आपको समर्पित कर दिया, अब आपकी आज्ञा का ही पालन करेंगे, आपका ही नाम जपेंगे। समर्पण, जीवन में जो समर्पण है उसकी बड़ी कीमत है। राजा बलि ने भी भगवान बावन से यही कहा कि दो पग में आपने मेरी संपत्ति नापी है और तीसरे पग में मेरा शरीर नाप लो, आज के बाद ये शरीर आपका, न माई का न बाप का। बोलो शंकर भगवान की
जय।
ये जीवन ही आपको दे दे। आनंदमयी माँ थी, अखंडानंद जी महाराज कथा सुना रहे थे, समाप्ति हुई तो एक तुलसी का पत्ता और शालिग्राम लेकर के चढ़ा करके आज से मैंने जीवन भगवान को दे दिया। जिससे कुछ मिले उसे कुछ देना चाहिए, जो नहीं देगा वो स्तेन चोर कहलाता है। तैर दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंगते स्तेन एव स। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन देवता तुम्हें देते हैं और तुम देवताओं को दिए बिना अगर खा लेते हो तो तुम चोर हो। क्या समझा? इसी तरह जिनसे तुम ज्ञान लेते हो अपनी यथाशक्ति सेवा नहीं करते तो ज्ञान अंदर टिकेगा नहीं, निकल जाएगा बाहर। सुनते रहना चाहिए, जो बन सके करते रहना। शंकर भगवान की
जय।
शिवरात्रि को ही ये ज्योति फिर इतनी विशाल है, पूजन कैसे करेंगे? तो भगवान शंकर ने छोटा बना दिया। जो शिव पिंडी है, शिवलिंग है, ये निराकार का प्रतीक है, और जो साकार है वो साकार का प्रतीक है। दोनों की उपासना का फल है, लेकिन साकार से निराकार का फल ज्यादा है। ये लिखा, पूर्णता दोनों में कमी नहीं है, लेकिन निराकार अखंड अनंत व्यापक ज्योति का प्रतीक है। यह मंदिर में शिव पिंडी रखनी हो तो 12 अंगुल की रखनी चाहिए, घर में रखना है तो अंगुष्ठक प्रमाण रखना चाहिए। भगवान शंकर को भोग लगाना हो तो बाहर रख के तो भोग लगाना चाहिए। पिंडी पर जो रख दिया जाए फिर वो चंड का भाग हो जाता है, वो आपके लिए नहीं रह जाता। इसलिए भगवान शंकर को जब भी भोग लगाना हो बाहर रख करके प्रणाम करना चाहिए। शालिग्राम साथ में हो जाए फिर तो पवित्र ही पवित्र है। ज्योतिर्लिंगों में, दिव्य मूर्तियों में, साकार मूर्ति में ये विधान नहीं है, केवल निराकार में अच्छी विधि मानी गई है। शिवरात्रि आर्द्रा नक्षत्र युक्त महापर्व मिल जाए उसमें अगर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए करोड़ों गुना फल प्राप्त हुआ करता है। जिसकी बुद्धि मंद हो गई है उसको ठीक करना हो तो शर्करा मिश्रित दुग्ध से शंकर जी का अभिषेक कराओ, बुद्धि ठीक हो जाती है। अच्छा, संतान प्राप्त गंगा जल से अभिषेक कराना सबसे श्रेष्ठ है। चारों पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं जो गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करता है। अभी आगे और कथाएं चलेंगी। जतिन शंकर भक्त है, कहते हैं गंगा किनारे अभिषेक कराना कथा के साथ, बहुत अच्छी बात है। गंगा जल से जो अभिषेक किया जाता है उसका विशेष फल है, हजारों लाखों गुना ज्यादा फल हुआ करता है। इसलिए भगवान का पूजन करना है। भगवान शंकर के लिए यह तिलक लगाया जाता है, तीन रेखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती है। भगवान शंकर के लिए जो लगता है ना, वैष्णव लोग ऐसा लगाते हैं, शंकर तीन रेखाएं हो गई ना, ये तीन रेखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होती है। तुम्हारे मस्तक में सदा भगवान का निवास रहता है। अच्छा, जो व्यक्ति 5 करोड़ शंकर का नाम जप देता है वो साक्षात शंकर का स्वरूप ही बन जाता है। 1000 नाम का प्रतिदिन जप करो 1000 दिनों तक, 10 लाख हो जाएगा। और प्रतिदिन ब्राह्मण को कुछ भोजन देते रहो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम जो सोचोगे वो भगवान शंकर की कृपा से अपने आप पूरा होता चला जाएगा। भगवान शंकर की समाराधना जीव का परम कल्याण कारण कहलाती है। रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष भगवान का नेत्र है। अक्ष माने नेत्र होता है संस्कृत में, तो रुद्राक्ष का मतलब है शंकर के नेत्र है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शंकर के नेत्र से जल गिरा, उसी से वृक्ष बना और उससे से फिर रुद्राक्ष जहां तहां फैले जाते। तुलसी माता बड़ी कीमती है, सुंदर है, लेकिन रुद्राक्ष जितना कीमती है दूसरे फल नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष यदि आज मिलता है 1.25 लाख में तो भी सस्ता है। तुलसी इतनी महंगी नहीं है रुद्राक्ष। 14 मुख तक रुद्राक्ष का वर्णन यहां है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, दूसरे 2 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप है, 3 मुखी रुद्राक्ष तीनों देवताओं का रूप है, 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का, ब्रह्मा चतुर्मुख है ना, 4 मुख, 5 मुखी जो है रुद्राक्ष, 5 धाराएं होती हैं, वो भगवान शंकर का स्वरूप है, 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, 7 मुखी रुद्राक्ष आनंद कामदेव का रूप है, 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरों का रूप है, 9 मुखी रुद्राक्ष भगवती दुर्गा का स्वरूप है, 10 मुखी रुद्राक्ष दिशाओं के देवताओं का स्वरूप है, 11 मुखी रुद्राक्ष फिर भगवान शंकर का रूप है, 12 मुखी सूर्य नारायण का है और 13 मुखी विश्वदेव का, और 14 मुखी जो मिल जाए वो भी भगवान शंकर का रूप होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में रुद्राक्ष की माला है और भस्मी लगी हुई है, रुद्राक्ष धारण किया है और शिव का नाम जप रहा है, वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप ही हो जाया करता है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां उसके शरीर में निवास करने लगती हैं, जो इस तरह से स्वरूप धारण किया करता है। इसलिए आराधना करना है, नाम जप करना है। 7.5 करोड़ मंत्र हैं अपने सनातन धर्म में, तो नमः शिवाय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए शिव शिव या नमः शिवाय का जब करते रहिएगा। 108 करोड़ अगर जप लिया जाए तो फिर तो सीधा शिव बन जाता है। अरे भाई तुम रुपयों के करोड़पति तो बनना चाहते हो तो कम से कम नाम के भी तो करोड़पति बनो। बोलो शंकर भगवान की
जय।
क्या नोटों के करोड़पति बनोगे तो फिर कभी कंगाल हो सकते हो, लेकिन नाम का करोड़पति जो बन जाएगा वो यहाँ भी सुखी रहेगा और ऊपर भी जाकर के आनंद भोगेगा, ऐसा यहाँ वर्णन मिलता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम नाम जपें। नाम जप की बहुत महिमा है। कलयुग में ध्यान हो नहीं पाता, मन चंचल बना हुआ है, बहुत बड़ी साधनाएं हो नहीं पाती, केवल नाम पर हो। अगर तुम शिव भक्त हो तो शिव शिव जपते रहो, बस सब कुछ हो जाएगा। और जहां हो वहीं, और दोनों हाथ की अंगुलियों को ऐसे कर दो तो शंकर जी बन ही जाते हैं। यहां वहां जाने की जरूरत ही नहीं, इसी का। और दूसरा यह है कि अंगूठा निकाल दो, ये जलेहरी हो गई, ये शंकर हो गए, और जल चढ़ा दो। यहां चढ़ाए वहां कैसे पहुंचेगा? अरे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि तुम मोबाइल में अंगुली यहां दबाते हो और घंटी अमेरिका में बजती है कि नहीं बजती? बोलो भाई, प्रत्यक्ष उदाहरण है। इंसान के बनाए यंत्र में जब ये चमत्कार है कि यहां बटन दबाओ और वहां बोले, तो भगवान ने भी सब बना रखे हैं, इनका पूजन करो कि सीधे भगवान के पास पहुंच जाएगा तुम्हारा। देवियां आटा गूंथती हैं, पेड़ा बनाती हैं, पेड़े को जरा ऊंचा कर दो, थोड़ा लंबा कर दो, गंधा चतपुष उसी में चढ़ा दो, भगवान शंकर की पूजा हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। सरल से सरल साधना भगवान शंकर के प्रति की गई है। और कलयुग में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। नाम जपो और भगवान शंकर का पूजन करो, तुम्हारा कल्याण है निश्चित। शंकर का भक्त कभी जल्दी गरीब नहीं होता है, शंकर का भक्त कभी जल्दी मूर्ख नहीं होता है, शंकर भक्त को जल्दी बीमारियां नहीं लगती हैं। आज जरा सा संकट आता है, महामृत्युंजय जप करा दो गुरु जी। और जो कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, उन पर भी जब संकट आता है तो महामृत्युंजय का जप कराते हैं। प्रकट नहीं कराएंगे तो चुपके से बैठाल के ब्राह्मण को। नहीं समझ में आ रही बात? ये तो महामृत्युंजय है ना, महामौत जो काल है उस पर भी विजय प्राप्त की तो महामृत्युंजय कहलाते हैं। इनके नाम का जप करना, इनका अभिषेक करो, इनका पूजन करो, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। बोले शंकर
भगवान की।
गौतम शंकर जी का एक भजन सुनो।
बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। लिए खोले अगम निगम के मेरे लिए खोले
दर्शन करके पावन गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। एक बड़ी सुंदर गुफा नजर आई, एकांत शांत, अंदर सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं, शीतल मंद सुगंध हवा भी है और सामने भगवती गंगा प्रवाहित हो रही। देवर्षि जी के मन में आया यहां बैठ के भगवत ध्यान करना चाहिए। योगी और भोगी दोनों एकांत चाहते हैं, भोगी भोगों के लिए और योगी भगवान का चिंतन करने के लिए। मन निर्मल हो तो समाधि लगने में देर नहीं लगती। शरीर थका हुआ तो नींद आने में देर कहां लगेगी। मन निर्मल हो, अगर आपके अंदर राग नहीं है तो समाधि अपने आप लग जाएगी। राग है, आंखें बंद करोगे मणिराम फिर भी निकल के यहां घूमने चले जाएंगे। मणिराम को निकलने के लिए खास छिद्रों की जरूरत नहीं पड़ती, निकल जाते। सोमिरत हरि ही श्राप गति बाधी,
सोमिरत हरि श्राप गति बाधी,
सहज विमल मन लागी समाधि,
सहज विमल मन लागी समाधि।
देवराज इंद्र घबरा गए, कहीं तप करके मेरी सिंहासन न छीन ले। कामदेव को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया और कहा जैसे भी हो देवर्षि का तप नष्ट कर दो। ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो तप भी नष्ट होने लगता है। कामदेव आया है, बसंत ऋतु का निर्माण किया, अप्सराएं दिव्य नृत्य और गान, उनके कोयल कंठ, और अंत में कामदेव ने बाण चलाए। लेकिन सीम की चाप सके को तासो,
सीम की चाप सके कोई तासो,
बड़े रखवारे भगवान जिसकी रक्षा करते हो उसके कोई सीमा भी लांघ सकता है क्या? कामदेव का कुछ असर नहीं हुआ। कामदेव आके चरणों में गिरा। अब देखो जो तप नष्ट करने आया उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और जो तप बचाएंगे विष्णु उनको श्राप दे रहे हैं। ये दिमाग की अपनी सोच है। कामदेव तो आया था तप नष्ट करने के लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। निरोग ने काम को जीत लिया, अभिमान से हार पराजित हो गया। मनुष्य के जीवन में जो अभिमान है मैं, ये सारे अनर्थों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
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 तिनते पुण्य उपजाई बहुसूला,
तिनते पुण्य उपजाई बहुसूला।
अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। अहंकार जो है ये सारे अनर्थों की जड़ है। अहंकार किसे कहते हैं? बोले शरीर को आत्मा मान लेना, इसी का नाम अहंकार होता है और उससे सारे अनर्थ शुरू हो जाते हैं। शरीर आत्मा नहीं है बाबा, कार में बैठ के जाने वाला मालिक कार नहीं हो जाता है। कार तो लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम है, इसी तरह आत्मा इस शरीर के अंदर है। ये तो कार की तरह बॉडी है, ये क्या इसको अपना मान लिया तुमने, बस यहीं से अनर्थ शुरू हो गए तुम्हारे। इसके माध्यम से ईश्वर को पाया जाता है। अभी बताया ना कि नौका किनारे पहुंच कर छोड़ दो, भोजन बनाया बाग बुझा दो, दिन रात में दीपक जलाए प्रकाश हो गया तो उसको बुझा दो। इसी तरह से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया चुटकी। पर अहंकार जो है, नारद जी के मन में अहंकार हो गया। जीता काम अहमित मन माही, मैंने काम को
जीत लिया।
मैं बुरी बलाय है सको तो निकसो भाग, कह रही में कब लग रहे रुई लपेटी आग। आग के ऊपर रुई लिपटी हुई है, कब तक सुरक्षित रहेगी? थोड़े देर में राख हो जाएगी, थोड़े समय में। अहंकार जिस जीवन में आ गया है उसका पतन सुनिश्चित है। और हम कहा करते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं कि काम जागता है कामनी को देख के, क्रोध जागता है शत्रु को देख के, लोभ जागता है धन को देख के, पर अहंकार हर जगह जाग जाता है। दूसरे दोष तो एक एक जगह जागते हैं, पर अहंकार हर कार्य में आगे आ जाता है। मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मुझ में ये है। और शास्त्र ये कहते हैं कि ज्यादा मैं करोगे तो मर के बकरा बनोगे तुम। तो बकरा क्या बोलता है भाई, देखो तो फिर तो सदा मैं करते रहोगे, मर के बकरा बनोगे तुम। और बकरा अपनी मौत कम मरते हैं, ज्यादातर वो काटे जाते हैं, ये भी समझ ले। इसलिए अहंकार को छोड़ो। नारद जी बीणा बजाते ब्रह्मलोक पहुंचे। सुनाओ बेटे, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, सारी कहानी अपनी सुना। सावधान किया, नहीं नहीं, सफलता मिले तो ईश्वर की कृपा गुरु की कृपा मानो, असफलता हो तो अपने दोष दे। अहंकार ने नहीं माने, शंकर के पास आए, भगवान शंकर को ये सुनाया सब काम की कहानी। ने कहा अभी भी समय है, छोड़ दो नहीं तो बुरी तरह से नीचे गिरोगे। नहीं माने और अब नारायण को सुनाने जा रहे हैं। एक बार कर तल कर वीणा,
एक बार कर तल कर वीणा,
गावत हरि गुण गान प्रवीणा,
गावत हरि गुण गान प्रवीणा,
क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा,
क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा,
जहाँ पद श्री निवास श्रुति
माता, जहाँ पद श्री निवास श्रुति माता,
हरि मिले उठी रमा,
हर मिले उठी रमा निकेता,
बैठे आसन
ऋषि समेता,
राम चरित
भारत सब भागे, भारत सब भागे, यद्यप प्रथम बरज शिव राखे।
पहले जाते थे क्षीर सागर दूर से साष काम, पर आज गए प्रणाम भी नहीं किए, ऐसे खड़े हो। एक सूक्ष्म संस्कार अंदर था कि नारायण भी बिना पत्नी के नहीं रह पा रहे, शंकर भी पार्वती के बिना, और मैं अकेला ब्रह्मचारी और काम को क्या नाक रगड़वा दिया। भगवान स्वयं सिंहासन से उठे, नारद जी को गले लगाया, बोले भिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मन मुनि दाया। देवर्षि जी बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ, सारी कहानी सुना। भगवान समझ गए अहंकार का अंकुर अंकुरित हो रहा है, इसको मिटाना है जल्दी से। ज्यादा बैठे भी नहीं, सुना करके बोले नारायण हम चलेंगे, अच्छा पधारो। भगवान ने नयागर बसा दिया, क्या शील निधि नाम के राजा राज्य कर रहे हैं, उनकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है, आज उसका स्वयंवर हो रहा है और नारद वहीं से निकल रहे हैं। चहल पहल जब देखी, सजावट देखी तो लोगों से पूछा क्या है, बोले आज महाराज की पुत्री का स्वयंवर है। क्या नाम है, विश्व मोहिनी। क्या मतलब हुआ, जो देख ले बिना मोहित हुए रह नहीं सकता। अहंकार तो अंदर था ही ना, मैंने काम को अहंकार नहीं करना, अहंकार बहुत बुरा है। बिना बुलाए देवर्षि जी उनके यहां पढ़ा रहे, आइए आइए देवर्षि जी, स्वागत है आपका। राजो बेटी का स्वयंवर होना है, जरा हाथ देख के बता दीजिए घर वर कैसा मिलेगा। हाँ हाँ बुलाओ। जब वो मेकअप करके निकली महाराज तो बड़ी बार लग रहे निहारी, बहुत देर तक तो उसको
देखते
ही रह गए। एक एक अंग का सौंदर्य विलक्षण। महाराज स्वयंवर का समय हो गया है, फल बता दीजिए। बोले राजन तुम्हारी पुत्री बहुत सुलक्षणी है, सब ठीक है ठीक है। रेखाएं देखी तो तीन रेखाएं पड़ी हैं, जो यही पर अमर सोई होई,
जो यही पर अमर सोई होई,
समर भूमि ते जीत न कोई,
समर भूमि ते जीत न कोई,
सेवाएं सकल चरा चरताई,
सेवाएं सकल चरा चरताई,
रेखाएं पड़ी जो इसके साथ विवाह कराएगा अमर हो जाएगा एक दूसरा इस उसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा तीसरा संसार उसके चरणों में नौन करे अंदर गुदगुदी हुई अगर मेरे ही साथ शादी हो जाए तो मौज हो जाएगी क्या नहीं तीन नारी विष्णु माया प्रकट भगवान ने ऐसा ही शरीर बनाया है बड़ों बड़ों को मोह में डाल सुता सुलक्षण कह नृपाही मुनिवर चले शोक मन बाहर गए सुंदरता चाहिए क्योंकि बहुत सुंदरी है मैं भी तप से निकला हूं ज्यादा सुंदर नहीं हूं भगवान विष्णु से क्यों ना सुंदरता मांग लो जयमाला पड़ जाए फिर उनकी सुंदरता लौटा देंगे पहले तलाक बिल तो था नहीं देश में नहीं शादी हो गई माने हो गई तो जैसे भी है तो ठीक है बहुविध विनय कीनते ही काला प्रकटे प्रभु कौतुकी
कृपाल
कृपाल वहीं से हे दीन बंधु हे असराशरण हे भक्त भयहारी बड़े वही भगवान विष्णु प्रकट अरे अरे देवर्षि जी अभी तो मिलके आए थे आप साष्टांग प्रणाम पहले गए थे तो वहां कुछ नहीं था अब
साष्टांग
जरूरत है ना ये लंबी दंडवत जो है भक्त भगवान को पाने के दंडवत करते हैं और संसारी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दंडवत करते लंबी दंड प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना है क्या ले आपन रूप देव प्रभु मोही
आपन रूप देव प्रभु मोही
आपन रूप देव प्रभु मोही
आपन रूप
सुंदरता प्रदान कर दें स्वयंवर होने वाला है उसे पाने का दूसरा कोई साधन नहीं इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूं तो हां करें ना करें इतने में नारद के मुख से निकल गया कि जेही विधि नाथ हो यही तो मोरा करहु सुबे गिदास में तो इसमें मेरा हित हो प्रो नारद तो हित देख रहे शादी हो जाए नहीं समझ रहे आप तो भगवान ने कहा जेहिविद हुई है परम हित तुम हित की बात कर रहे हो जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही कर अब शादी कराने में हित है कि न कराने में कह तो दोगे यहां लेकिन चाहोगे शादी 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 मुनिहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाए बखाना मरकट बदन भयंकर देही बंदर की शक्ल दे यहां तीन रूप है नारद को अपना रूप नारायण का दिख रहा है राजकुमारी को बंदर का दिखेगा और जो बाकी लोग बैठे हैं उनको नारद का रूप दिखेगा तीन फ्रंट सीट में जाके बैठ गए बड़े खुश होकर बैठ शंकर जी ने दो गण साथ भेज दिए वो बैठे हुए व्यंग कर रहे हैं अब तो देवर्षि जी को जयमाला पड़ ही जानी है बाकी लोग तो उदास होकर बेचारे जाएंगे आनंद कर बैठे बाहर प्रभु रहा और नारद और फूले जा और जैसे ही बाहर निकली महाराज बंदर का मुंह देखा बार रोम वाले ایسا منہ اس نے موڑا دوبارہ دیکھے ہی نہیں ہوتا. اب جنارہ جی اٹھ کے کھڑے ہونے لگے, شاید دیکھا نہیں ہوگا, اور راجکمار پکڑ کے بیٹھا رہے مہاراج, بابا جی ہو کر بابو جی بن رہے ہو, بولو شنکر بھگوان کی. کیا بابا جی
بابو جی
بابو جی, کئی بابا جی بابو جی بن چکے ہیں. اتشے پربل دیو تب مایا چھوٹ رام کرو جو
دایا.
ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے سنتوں کو گرست بن گئے, اتشے پربل. بھگوان راج کمار کا ویش بنا کے جا پہنچے اور بش موہنی نے مالا ڈال. اب تو ناراض اتنے ویاکل ہو گئے, جیون کی بھر کی کمائی سے ڈائمنڈ خریدا, اب گر گیا. جو حال اس کا ہوگا وہی ناراض جی کا. من گر گئی چھوٹ جن
گاٹھی.
دیکھو دکھ جو ہوتے ہیں نا منشی کو, وہ بھگوان کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں, من کے زیادہ ہوتے ہیں. اچھی طرح سمجھ لینا, جیون میں جو دکھ آتے ہیں وہ سب ایشور کے دیے نہیں ہیں, زیادہ تر من کے دیے دکھ ہوتے ہیں. اب ویاکل ہو رہے ہیں, کیا شادی ہو چکی تھی کیا, سگن وگن روکا ووکا کچھ ہوا تھا کیا؟
کچھ بھی نہیں ہوا تھا,
بس من میں آ گیا کہ میری بن جائے, بس یہی کا دکھ ہے. رو رہے ہیں پرے کا. گنوں نے کہا کہ ذرا اپنی شکل تو دیکھ لو بابا. جب پانی میں شکل دیکھی مرکٹ بدن بھجنکر دے بھیان, کروڑھ آ گیا. جن کے لیے کیا برہمچرج کا پالن کر رہے ہیں, شادی نہیں کرائی, ہر سمے نارائن نارائن, آج ان کو گالیاں دینے جا رہے ہیں. یہ سٹی ہے من کی. من کے ہارے ہار ہے, من کے جیتے جیت. جو من سے ہار گیا وہ سنسار سے ہار گیا, اور جس نے من کو جیت لیا اس نے جگ کو جیت لیا. شاستر کہتے ہیں من کو کنٹرول. زیادہ تر دکھ من سے پیدا ہوتا, دھیان رکھنا ہے. آپ اپنی اچھاؤں کو دبا لو پھر دیکھو دکھ کہاں سے آتا ہے. آپ دبتی نہیں نا, سمسیا تو یہ ہے. پنجابی کی کہاوت ہے, من ساڑھے آنکھیں نہیں لگتا, اسیودے آنکھیں کیوں لگے. کہتے تو رہیں گے پر اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے. من دہیوں ساتھ کی مری ہو جائی
جگت موری اپہاس کرائی.
نارد جی کہتے ہیں دہیوں ساتھ کی مری ہو جائی جگت موری اپہاس کرائی. جاؤں گا شراپ دوں گا ماروں گا مر رہوں گا. بیچ ہی پنتھ ملے دنجاری سنگ راما سوئی راج کماری. بیچ ہی راستے مل گئے نارائن جی, کرودھ میں جا رہے تھے دانت پیستے ہوئے, اور وہ بغل میں کھڑی ہوئی ہے. کون نارد کی چاہتی جو ہے چہیتی, وہ نارائن کے بغل میں ہی کھڑی ہے اور بالکل سٹی کھڑی ہوئی ہے.
yeah. اور جلے میں نمک,
کہتے ہیں نا جلے میں نمک برکنے والی بات ہے کہ نہیں ہے. بھیانک وشنو تم چھلی ہو, تم کپٹی ہو, تم کسی کو اپنے سے زیادہ بڑھتے دیکھنا نہیں چاہتے ہو. بےچارے شنکر کو تم نے زہر پلا دیا اور لکشمی نکلی تو گلے لگا لی. تم کپٹی ہو, سوارت سادھک کٹل تم کپ سدا کپٹ بے ہو. یہ کون بول رہا؟
نارد جی.
نارد نہیں, نارد کا جو اہنکار ہے, نارد کی جو واسنا ہے وہ بول رہے ہیں. تم نے مجھے دکھی بنایا ہے, تمہیں بھی دکھی بننا پڑے گا. تم نے بندر کا منہ بنا کے دیا مجھ کو, تم بندر ہی تمہاری سہایتا کریں گے. تم اپکار کین مم بھاری, ناری برہ تم ہو دکھاری. जैसे मैं रो रहा हूं इसी तरह तुम्हें रोना पड़ेगा, स्त्री के भी होगा। तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे क्या, समझ में आ रहा है क्या नहीं? तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, उसके लिए रोना होगा, बंदर ही तुम्हारी सहायता करने वाले। ये कौन कह रहे हैं भाई? भक्त कह रहा है भगवान से और चेला कह रहा है गुरु से, क्या समझा? पुत्र कह रहा है पिता से, पत्नी कह रही है पति से। आज स्थिति ये बन गई है, मन के क्रोध को व्यक्ति रोक नहीं पाते, अपने स्वार्थ के कारण अंधे बन जाते हैं। जिस जो मन में आए सो क्या डाल, जैसे ही श्राप दिया भगवान ने, श्राप तो ले लिया और माया ऐसी खींची, ना वहां राजकुमारी है, ना लक्ष्मी है, ना वो नगर है, ना वो भविष्यवाणी, ना कुछ है। जैसे स्वप्न टूट जाए एकदम, अब तो चरणों में गिर गए। तब मुनि अति सभी तहारी चरणा,
तब मुनि अति सभी गई चरणा,
तहे पाही प्रणतारति हरणा,
ताही प्रणतारति हरणा।
मैं अपराध किए बहुतेरे,
मैं अपराध किए बहुतेरे,
मैं अपराध किए बहुतेरे,
मैं अपराध किए बहुतेरे। पाप मिटाई तुम मेरे,
चरणों में लिपट गए, रो रो करके चरण धो रहे, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दिया जाए, मैं इसके बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, दीन बंधु ये मेरा पाप कैसे मिटेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा,
जपहु जाय शंकर सतनामा,
जपहु जाय शंकर सतनामा,
जपहु जाय शंकर सतनामा।
हुई है तुरत हृदय विश्रामा,
हुई है तुरत हृदय विश्रामा,
को नहीं शिव समान प्रिय मोरे,
शिव समान प्रिय मोरे,
कस परतीत तजउ जन
भोरे, कस परतीत तजउ जन भोरे,
यही पर कृपा न करे पुरारी,
यही पर कृपा न करे पुरारी,
सो न पाव मुनि भक्ति हमारी,
सो न पाव मुनि भक्ति हमारी।
नारायण ने कहा जिस पर शंकर की कृपा नहीं हुई ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति पाई नहीं सकता। अगर राम को, कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करना है तो शंकर को प्रसन्न कर लो। भगवान विष्णु एक एक कमल चढ़ा रहे थे शंकर जी पर, शिव सहस्त्र नाम से भगवान शंकर ने एक कमल छुपा दिया, ये देखने के लिए अभी क्या करते हैं। भगवान चाहते कितने कमल पैदा कर लेते संकल्प से, लेकिन जब देखा एक कमल दिख नहीं रहा और एक नाम बाकी है तो अब मंगाए दूसरे से या ले जाए, नहीं नहीं लोग मुझे कमल नयन कहते, समझ में आ रहा नहीं? भगवान विष्णु सोच रहे हैं लोग मुझको
कमल नयन के,
कमल नयन का मतलब क्या होता है? जिनके नेत्र कमल की तरह कमल नयन, तो क्यों ना एक नेत्र निकाल के शंकर पर चढ़ा दूं, मेरी पूजा सफल। एक नेत्र निकाला भगवान विष्णु ने और शंकर पिंडी पर चढ़ा दिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए।
हरे हरे
महादेव।
नेत्र तो जैसा था वैसे ही हो गया। नारायण तुमने दुनिया को दिखा दिया प्यार कैसे किया जाता है, श्रद्धा भक्ति का क्या स्वरूप होता है। मैं जगत की रक्षा के लिए आपको सुदर्शन चक्र देता हूं, क्योंकि मेरा काम तो ध्यान करने का है, संसार की रक्षा करना है आपका काम। तो शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शंकर का दिया हुआ है, समझ रहे हो क्या नहीं? हरिष्ठे साहस्रम कमल वलिवादाय पद्योर यदेको नेतसु निज मुद हरन नेत्र कमलो गतो भक्तुद्रे का परिणत से उचक्कर। भगवान विष्णु अपना नेत्र निकाल के चढ़ा रहे शंकर पर और तुम बेलपत्र भी नहीं चढ़ा पाते। शंकर से प्यार करो आगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम कमी कुछ नहीं रहनी है, ये समझ लो। यतिन बैठा हुआ है, छोटा सा तप से शिष्य बना है, जिसके माता पिता दादा कहते थे अपना पेट भर पाएगा कमा के कि नहीं, लेकिन शंकर की भक्ति का चमत्कार आज वो सैकड़ों को खिला सकता है। फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कहता है उल्टा काम करूं सीधा हो जाता है। शिव भक्ति का चमत्कार। भगवान नारायण ने कहा कि तुम शिव पुराण सुनो जाकर के, 108 नाम शंकर के हैं यहां लिखे हुए हैं, उनका जप करो सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाए। अब नारद जी सब तीर्थों में स्नान करते हैं, काशी जाके बाबा विश्वनाथ के चरणों में गिरे, प्रभु अब मैं आपका नाम और आपका चरित्र सुनने के लिए